नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और अधिक मामलों की चेतावनी दी। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमरीका को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और इसे रास्ते से दशकों से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज खाड़ी से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अभी बड़ी कीमत चुकानी है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में अमरीका और अधिक कड़ा रुख अपना सकता है। अमरीका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल श्री स्टीवर्ट एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। अमरीका के अधिकारियों के अनुसार जेरेड कुशनर ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ वार्ता दल में शामिल करने में मदद की है। इससे पहले श्री स्टीवर्ट फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज से जुड़े थे। ये संस्था ईरान के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए जानी जाती है। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने अमरीका समर्थित 9 सूत्री शांति योजना के जवाब में एक प्रस्ताव भेजा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अमरीका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो में उसका सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। कुछ ही दिन पहले मर्ज ने पश्चिम एशिया संघर्ष को ठीक से न संभाल पाने के आरोप में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी। इसके बाद अमरीका ने कहा था कि वो जर्मनी से अपने 5,000 से अधिक सैनिकों को हटा लेगा। श्री फ्रेडरिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज की खाड़ी को दोबारा खोलने और पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी बातचीत में ईरान की रणनीति बेहतर साबित हो रही है। श्री ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि श्री मर्ज जर्मनी में लोकप्रिय नहीं रह गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय देशों के नेता दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आर्मेनिया को रूस का सबसे नजदीकी मित्र देश समझा जाता है और वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूरेशिया आर्थिक संघ का सदस्य देश भी है। आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा भी है। आर्मेनिया को रूस से सस्ती दरों पर गैस मिलती रही है। आर्मेनिया में आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन EPC में शामिल हो रहे हैं। कल पहला यूरोपीय संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होगा। इसमें यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता भी शामिल होंगे। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल आर्मेनिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की थी। यूक्रेन ने हाल के दिनों में यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। श्री जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री स्टार्मर के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग तथा रूस पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद हुई अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस समूह से अलग होने के ऐलान के बाद आपूर्ति संतुलन बनाने के लिए की गई है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच जारी है। प्रभावित लोगों में एक 69 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक भी है जो जोहान्सबर्ग में एक अस्पताल में गहन चिकित्सा में है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। कीनिया में मूसलाधार वर्षा के कारण आई भीषण बाढ़ से इस सप्ताह देश भर में करीब 10 लोगों की मृत्यु की खबर है। अधिकांश मौतें देश के पूर्वी क्षेत्र में हुई। अधिकारियों ने सभी लोगों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों से सतर्क रहने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बचने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करने का आह्वान किया है। इस वर्ष मार्च में कीनिया में बाढ़ से कम 112 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में एक नाव के उत्तरी तट से टकरा जाने के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। 82 लोगों को ले जा रही ये नाव बोलेगने सुरमेर के पास हॉर्डे लॉट समुद्र तट से रवाना हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि इंजन खराब होने के कारण ये नाव किनारे पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई। मामले की जांच जारी है। चीन पत्रकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है और इसकी सरकार ने दुनिया भर में पत्रकारिता और सूचना के अधिकार के खिलाफ दमनकारी अभियान चला रखा है। पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने ताजा वार्षिक सर्वेक्षण में ये बात कही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। अमरीका हुरमुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई है और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने अमरीका को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।